ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। छठा अध्याय प्रारंभ किया जाएगा। बैठने में भूमि कठिन पड़ रही है, इसको तो अपने साथ पॉलिथीन में अपना तौलिया लाना चाहिए, वो बिछा कर आराम से बैठ जाना चाहिए, व्यवहारिक होगा। श्री सुकवाच एवं स्तुतः सुरगणैः भगवान हरिरीश्वरः तेषामाविर्भूत राजन् सहस्रार्को दयद्युतिः विरिञ्चो भगवान् दृष्ट्वा तेनैव महसा सर्वे देवा प्रतिहते क्षण ना पश्यन् खं दिशः क्षोणी आत्मानं च कुतो विभुं विरिञ्च भगवान् दृष्ट्वा सह सर्वेण तां तनु स्वच्छामरकतश्यामाम् पद्मगर्भारुणेक्षणाम् तप्तहेमावदातेन लसत्कौशेयवाससा प्रसन्नचारु सर्वाङ्गीम् सुमुखीम् सुन्दराभ्रुवाम् महामणिकिरीटेन केयूराभ्याम् च भूषिताम् कर्णाभरणनिर्भात कपोलश्रीमुखाम्बुजाम् काञ्चीकलापबलय हारनूपुरशोभिताम् कौस्तुभाभरणां लक्ष्मीं बिभ्रतीं वनमालिनीं। अब एक बार ही आवृत्ति हो जा रही है, हम पूरी आवृत्ति कराएंगे जितनी कथा कहनी है, अब दूसरी आवृत्ति नहीं होगी। सब लोग बोलिए अपना अपना समाज करके ही साथ में। कौस्तुभाभरणां लक्ष्मीं विभ्रतिम् वनमालिनीम् सुदर्शनादिभिः स्वाश्रये मूर्तिमद्भिरुपासिताम् तुष्टाव देव प्रवरः सर्वः पुरुषम् परम् सर्वामरगणैः साकम् सर्वाङ्गैरवनिम् गतैः। श्रीब्रह्मोवाच। भगवान जब प्रकट हुए हैं तब यह स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे हैं देवताओं के साथ। अजात जन्म स्थिति संयमाय गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरणिम् ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। रूपम् तवैतत् पुरुषर्षभेज्यम् श्रेयोर्थिभिर्वैदिक तांत्रिकेण योगेन धातः सहन स्त्रिलोकान् पश्याममुस्मिन्नुह विश्वमूर्तौ त्वय्यग्रयासि त्वयि मध्ययासि त्वय्यन्तयासीदिदमात्मतन्त्रे त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्याम् परस्य मृतस्मेव परः परस्मात् घटस्य मृत्स्नेव परः परस्मात् त्वम् मायात्मा श्रयया स्वयेदम् निर्माय विश्वम् तदनु प्रविष्टः पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिण गुणद्यवायेऽप्यगुणम् विपश्चितः यथाग्निमेधस् अमृतम् च गोसु भुव्यन्नमम्बुद्यमने च वृत्तिम् योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वाम् गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति तम् त्वाम् वयम् नाथ समुज्जिहानाम् सरोजनाभाति चिरेप्सितार्थम् दृष्ट्वा गता निर्वृतिमद्य सर्वे गजादवार्ता इव गाङ्गमम्भः सत्वम् विधत्स्वाखिल लोकपालः वयम् जदर्थास्तव पादमूलम् समागतस्ते बहिरन्तरात्मा किंवान्य विज्ञाप्यमशेष साक्षिणः अहम् गिरित्राश्च सुरादयो ये दक्षादयोग्नेरिव केतवस्ते किं वा विदामेश पृथग् विभाता विधत्स्व सम्नो द्विजदेव मन्त्रम् श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार स्तुतः गुण गाए गए सुर गण ही देवताओं के समूहों द्वारा भगवान सदैव स्वर्ग पूर्ण हरि भक्तों का दुख दूर करने वाले ईश्वरः सर्वशक्तिमान तेषां उनके बीच में आविहि प्रकट अभूत हुए राजन हे महाराज परीक्षित सहस्रार्को दयाद्युति ही सहस्रों सूर्यों के उदय होने पर जैसी द्युति होती है हो सकती है ऐसी द्युति जिनमें है वे भगवान। तो इसके पूर्व अध्याय में श्री ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ भगवान की स्तुति किए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं सुरगणैः स्तुतः, एवं स्तुतः सुरगणैः भगवान हरिरीश्वर। भगवान हरि ईश्वर इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुत हुए, इस प्रकार भगवान का गुण गाया उन्होंने। पूरा पांचवा अध्याय वो स्तुति है, उसी को यहां एवं कह रहे हैं, एवं इस प्रकार, इस प्रकार देवताओं के द्वारा भगवान का गुण गाया गया। भगवान के श्री विष्णु के यहां तीन गुण बता रहे हैं, भगवान हरि ईश्वर। तो यहां भगवान का अर्थ है सुंदर, परम सुंदर, और सर्वज्ञ अर्थ भी है, और हरि का अर्थ है अपने भक्त देवताओं का दुख मिटाने में जो तत्पर रहते हैं, उनका दुख हरने में तत्पर रहते हैं, तो इसलिए वो हरि है। और ईश्वर उनका दुख हरने में समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान। तो ऐसे प्रभु जब प्रशंसित हुए, उनका गुण गाया गया, तो तेषां उनके सामने ही या उनके बीच में ही आविह अभूत प्रकट हो गए। भगवान के एक और गुण बताए जा रहे हैं कि सहस्रों सूर्य अगर एक साथ उगे तो जैसी द्युति होगी वैसी द्युति भगवान में होती है। इसको संस्कृत में अभूत उपमा अलंकार कहते हैं। ऐसे दृश्य से, वस्तु से उपमा देना जो कभी हुआ नहीं, तो उसको अभूत उपमा अलंकार कहते। एक साथ 1000 सूर्य कभी उगे नहीं, पर एक शैली है साहित्य की, बहुत द्युति इसका अर्थ ये है। सुखदेव गोस्वामी सहस्र कह रहे हैं, सहस्र का अर्थ है हजारों, अनंत अनंत सहस्र का अर्थ। एक सूर्य उगता है तो इतना प्रकाश होता है, सहस्र सूर्य एक साथ उदित हो तो कितना प्रकाश होगा। तो सहस्र सूर्यों के उदित होने पर जितना प्रकाश हो सकता है ऐसा प्रकाश भगवान में रहता है। ये हरि का ही एक विशेषण है, भगवान का या ईश्वर का, इतने तेजस्वी हैं। सहस्राणाम अर्काणाम उदय या दुति तद्वत द्युतिर्जस्य स। हम भक्तों को भगवान के इन गुणों पर विचार करना चाहिए। इस तरह में भी कभी हुआ नहीं लेकिन उपमा दी जा रही है, अद्भुत प्रकाश है भगवान में। तो हुआ क्या कि जब देवताओं के सामने भगवान प्रकट हुए, तेनैव महसा तेजसा सर्वे देवा, भगवान के उस तेज से सारे देवता प्रतिहते क्षणा, प्रतिहतानी इक्षणानी चक्षुंसी जैसा ते, उनके नेत्र प्रतिहत हो गए, चौंधिया गए, इसका अर्थ ये चकचका गए, एकाएक प्रकाश हुआ भगवान का। ईशोपनिषद में एक श्लोक में कहा गया है कि हे प्रभु आप अपना तेज हटा लीजिए जिससे हम आपका ठीक से दर्शन कर सकें। भगवान में इतना प्रकाश है कि उसके चलते लोग उनको देख नहीं पाते हैं, और उनका बिल्कुल बहिरंग प्रकाश है, उनके नख की ज्योति, तो कुछ लोग तो उसी में चौंधियाए हुए हैं, उसी को अपना सब कुछ मानते हैं। कोई डिवाइन लाइट कहता है, कोई कुछ लाइट कहता है, जो भी हो, और उसमें भी कुछ लोग संतुष्ट रहते हैं, कि ब्रह्म ज्योति कहते हैं, कोई लाइट देखते हैं। लाइट और कुछ नहीं है, वो भगवान का ही लाइट है वास्तव में। परंतु उपनिषद में यह विनय है कि हे प्रभु अपने लाइट को हटाइए जिससे हम आपको देख सके। यहां इतने बड़े बड़े देवता हैं, केवल भगवान ब्रह्मा जी को और भगवान शिव को छोड़कर कोई नहीं भगवान को देखा है। सबकी आंख एकदम चौंधिया गई, चकरा गई। तेनैव महसा सर्वे देवा प्रति हते क्षणा ना पश्यन खम दिशा क्षोणिम आत्मानं च कुतो विभुम। तो इतनी आंखें चकरा गई, उनकी चौंधिया गई कि वे न आकाश को देख रहे थे, न आकाश दिखाई दे रहा था और न तो दिशाएं दिख रही थी, दिशाओं में क्या है, और न खम दिशा छोड़ी, और न तो पृथ्वी देख रहे थे, जिस धरातल पर खड़े थे वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। न आत्मानम, अपना हाथ पैर ही कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इतना प्रकाश से आंखें चौधिया गई, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जब ये सब नहीं देख रहे थे तो फिर भगवान को कहां से देखें, जब अपने को भी नहीं देख रहे थे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो कुतो विभुम, फिर भगवान को कैसे देख पाएंगे। तो कोई नहीं देखा, पर ब्रह्मा जी ने देखा। विरिंचो भगवान दृष्ट्वा सहसर्वेण ताम तनु। ताम तनु भगवान के उस सुंदर शरीर को, श्री विग्रह को, श्री विरंची भगवान ने देखा। विरिंच भगवान, श्री ब्रह्मा जी को विरिंच कहते, उन्होंने देखा। और सहसर्वेण, सर्व भगवान शिव को कहते हैं, शिव जी के साथ देखा। शिव जी भी देख रहे थे और भगवान ब्रह्मा भी। ये समर्थ हैं, क्योंकि भगवान हैं तो इनकी आंखें नहीं चकराई ये देखने में बिल्कुल समर्थ हुए। भगवान का अपना अंग है। श्रीधर स्वामी इस श्लोक के उपक्रम में बहुत सुंदर बात कहते हैं। अनादि ही आदि ही, ना भूता भू अभूत। अद्भुत ढंग से लिखते हैं कि यह भगवान का रूप है, केवल अनादि था इस प्राकृत जगत में। अनादि, अन आदि, आदि मैंने प्रकट होना, प्रकट नहीं था। तो जो प्रकट नहीं था वो प्रकट हुआ। तो प्रकट नहीं था का अर्थ यह नहीं है कि भगवान ने तुरंत कोई नया रूप बनाया। केवल पर्दा मान लीजिए हटा दिया जाए कहीं से, तो कोई स्टेज पर कोई आदमी दिखाई दे तो ये नहीं कहेंगे कि वो इस जन्म हो गया, पहले इसका रूप नहीं था और पर्दा हटाते ही दूसरा रूप हो गया। भगवान का शरीर नित्य है और विभू है। इसी बात को श्री सुखदेव गोस्वामी यहां कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी के शब्दों में। श्री ब्रह्मा जी ने यही कहा है, भगवान का शरीर स्वरूप नित्य है और विभू है। विभू का अर्थ है अपरिच्छिन्न, वो सर्वव्यापक है और सब कुछ उनके भीतर है। यह है विभू का अर्थ। तो श्रीपा श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने अनादि को आदि किया, आदि किया। और ऐसी बात नहीं थी कि ना भूता भूत अभूत, न अभूता कि भगवान का वह श्रीविग्रह पहले नहीं था उसको उन्होंने प्रकट किया, ऐसी बात नहीं है। जो नित्य है, बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम लिखते हैं सिद्धो स्वामी। भगवान ने अपने अनादि स्वरूप को केवल प्रकट किया, उनका वो नित्य स्वरूप है। अपने धाम में श्री भगवान अपने परिकरों के साथ नित्य लीला करते रहते हैं, और कभी कभी इस प्राकृत जगत में वे अवतार लेते रहते हैं, अपने को प्रकट करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि राम कृष्ण आदि रूपों में वे प्रकट होते हैं, उनका वो स्वरूप है। कुछ अज्ञ लोगों की ऐसी धारणा है कि वास्तव में भगवान निराकार होते हैं और इस जगत में आते हैं तो आकार धारण कर लेते हैं। यह गलत बात है, इसी का निषेध करने के लिए सब वर्णन किया जा रहा है। भगवान अपने धाम में रहते हैं नित्य, यहां तक कि इस जगत में भी वे रहते हैं, कण कण में प्रविष्ट हैं, उनका रूप है वह नित्य है और विभु है, अपरिच्छिन्न है। तो ब्रह्मा जी ने उस श्री विग्रह को देखा भगवान शिव के साथ, विरिंचो भगवान दृष्ट्वा सहसर्पेण ताम तनु, उस तनुम का, उस श्री विग्रह का वर्णन यहां किया जा रहा है। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के कैसे स्वरूप को, सुंदर रूप को देखा, उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की आंखों से वे देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं भगवान पर और भगवान शिव देख रहे हैं, और सब देवता तो वो बेचारे कुछ देख नहीं रहे थे, तौ दिया गए थे, परंतु इसका ये अर्थ है कि कुछ देर में सबको दिखाई देने लगे भगवान, वे लोग भी स्तुति कर रहे हैं, ऐसा वर्णन आता है। देवता भी किए, ऐसा होता है ना, कोई बहुत प्रकाश देख करके आंखें चौधिया जाते हैं, लेकिन धीरे 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 दिखाई पड़ता है। भगवान के रूप को भी देखने लगे, कैसा रूप है भगवान का, जो नित्य है और विभु है, वो है स्वच्छामरकतस्यामाम कंज गर्भारुणे क्षणाम। श्री ब्रह्मा जी देख रहे हैं स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल, चमचम चमक रहा है देह, निर्मल देह, सुअच्छाम अत्यंत अच्छा, निर्मल स्वच्छ, मरकत श्यामाम, मरकत मणिवत श्यामाम, भगवान के श्री विग्रह को श्री मूर्ति के रूप में वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए सब स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है। ये अधिक वर्णन की शैली है, ताम मूर्ति, वह मूर्ति, तो इसीलिए मूर्ति मूर्ति स्त्रीलिंग शब्द है, अतः सबका वर्णन स्त्रीलिंग में आ रहा है। स्वच्छाम मरकत श्यामाम, मरकत मणि के समान नील वर्ण है भगवान का, कंज गर्भारुणे क्षणम। और श्री ब्रह्मा जी देख रहे हैं भगवान की आंखें, दोनों आंखें कंज गर्भ, कमल के कोष के गर्भ के भीतर जैसे अरुणिमा होती है, वैसे भगवान के दोनों नेत्र अरुण थे। कंज गर्भारुणे क्षणम, श्री ब्रह्मा जी इस तरह से दर्शन कर रहे हैं भगवान शिव के साथ। ये ध्यान का विषय है, पहले तो समग्र शरीर का ही बहुत अच्छा स्वच्छ रंग का वर्णन किया, मरकत श्याम, अब आंखों का कंज गर्भारुणे क्षण, कंज कमल गर्भ कोष, कमल कोष लालिमा रहते, ऐसे हल्का थोड़ा थोड़ा अरुण वर्ण का भगवान का नेत्र, इसके बाद कपड़ा का वस्त्र का वर्णन कर, जैसे जी ब्रह्मा जी देख रहे हैं वैसे सुखदेव को स्वयं वर्णन कर। तप्त हेमावदाते न लसत कौशेय वाससा, तप्त स्वर्ण की तरह जिसकी आभा है, अर्थात जो पीत वर्ण का है, पीताम्बर पीत, लसत कौशेय वाससा, लसत कौशेय वासा, वह वास, वास माने वस्त्र, लसत बहुत सुंदर लग रहा है, भगवान बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं, तो शरीर सांवला है लेकिन तपाए हुए सोने की तरह पीत वर्ण है वस्त्र का। लसत कौशेय वास, और वस्त्र कौशेय वास वस्त्र है, कोष से बना हुआ वस्त्र है, रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं, कौशेय वास सा, ये इसको कहते हैं ध्यान। देख रहे हैं ब्रह्मा जी भगवान शिव और बाद में सब देवता भी देख रहे हैं, पर सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं, उनके वर्णन से हम लोगों को अवसर मिलता है भगवान के स्वरूप का चिंतन करने का, ध्यान करने का। लसत कौशेय वास प्रसन्न चारु सर्वांगी। श्री मूर्ति का वर्णन प्रसन्न चारु सर्वांगी प्रसन्नानी चारुणी सुंदराणी सर्वाणी अंगानी अंगानी जस्याम ताम या जस्या ताम। उस श्री विग्रह के प्रत्येक अंग परम सुंदर है, प्रसन्न है और सुंदर है। प्रसन्न चारु प्रसन्नानी चारुणी सुंदराणी सर्वाणी अंगानी जस्या ताम। श्री मूर्ति सभी अंग प्रसन्न है और परम सुंदर है। सुमुखीम शोभनम मुखम जस्या ताम, और मुख बहुत सुंदर है, सुशोभित हो रहा है। सुंदर भ्रुवम और दोनों भौं हैं, आंखों के ऊपर जो केस की लकीर होती है उसको भौं का, तो बहुत सुंदर है। सुंदर भ्रुवम महामणि किरीटेन केयूराभ्याम च भूषितान। महामणि किरीटेन महांतो मणय जस्मिन तेन किरीटेन किरीट मुकुट, मुकुट में महामणियां लगी हुई हैं और सब अप्राकृत हैं चिन्मय। जैसे महामणि किरीटेन किरीट मुकुट महामणियों से युक्त है। ध्यान रखना चाहिए कि महामणि का अर्थ प्राकृत मणि नहीं है। भगवान जो आभूषण पहनते हैं मुकुट धारण करते हैं तो वह अप्राकृत है। महामणि किरीटेन तो केयूराभ्याम च भूषितम और केयूर लगाए, केयूर यहां जो बांधा जाता है अलंकार उसको केयूर कहते हैं। दोनों बाहों में केयूर इन सबसे भूषिताम भगवान की वह श्रीमूर्ति भूषित है, बहुत सुंदर लग रही है। करणा भरण निर्भात कपोल श्री मुखाम्बुजान, और करणा भरण करण करण आभरण कानों के जो गहने हैं कुंडल जिसको कहते हैं, कुंडल हिलते रहते हैं और परम दिव्य कुंडल है तो चमक रहे हैं, उनकी चमक भगवान के दोनों गालों पर पड़ रही है। करणाभरण निर्भात कपोल करणाभरणाभ्याम कुंडलाभ्याम निर्भात, कुंडल चमक रहे हैं और उन दोनों कुंडलों के कारण भगवान के दोनों गाल चमक रहे हैं। निर्भात हाथ का अर्थ है उज्ज्वलीकृत, ऐसे सुंदर गाल की शोभा जिस मुखाम्बुज में है, जिसका मुखाम्बुज ऐसा है, ऐसी मूर्ति वह है। कुंडल की आभा गालों पर और गाल के कारण श्री मुख अम्बुज मुख कमल और सुंदर लग रहा है। भगवान इस तरह से हमेशा प्रसन्न रहते हैं और परम सुंदर हैं, दिव्य अप्राकृत हैं वे सच्चिदानंद हैं। कुंडल आदि भी सब चिन्मय हैं, सब दिव्य है। भगवान कृष्ण के विषय में उद्धव जी कहते हैं कि भूषण भूषणांगम, कृष्ण जब गहना पहनते हैं तो गहने ही सुंदर लगते हैं, उन पर धारण होने के कारण गहनों की शोभा बढ़ाते हैं। पर कभी कभी गहने भी भगवान की सुंदरता में और चार चांद लगाते हैं। यहां पर कुंडल जो जगमग कर रहे हैं इसे भगवान की गाल दोनों गाल चमक रहे हैं, झलमल कर रहे हैं, वो तो दर्पण की तरह है। और ऐसे गालों से श्री है मुखाम्बुज पर मुख कमल पर, इस तरह भगवान सुंदर लग रहे हैं। कांची कलाप बलया हार नूपुर शोभिताम, कांची कटी मेखला कमर में भगवान के धोती के ऊपर, पीताम्बर के ऊपर चौड़ा बेल्ट सोने का बांधे हुए है, और उसमें किंकड़ियां हैं, छोटी छोटी घंटियां हैं, इसलिए कांची कलाप कहते हैं। कलाप का गहना भी होता है आभूषण, लेकिन कलाप का समूह भी होता है। तो अनेक घंटियां हैं, जब भगवान चलते हैं तो झनझन झनझन बजती हैं, तो कांची कलाप कहते हैं। कांची वास्तव में एक ही है, परंतु उसमें घंटियां बहुत लगी हैं, इसलिए उसको कांची कलाप कहते हैं। या कांची मेखला रूपी आभूषण पहने हैं, कांची कलाप बलय, और बलय कहते हैं कंकड़ को, जो हाथों के बाजू में बाजूबंद, चारों भुजाओं में भगवान बांधे हुए हैं। इस तरह से इसको समझना चाहिए। बाहों में केयूरा भ्याम च भूषिता, दो ही बाह में भगवान केयूर बांधे हैं, और बलय तो चारों भुजाओं में लगाए हैं। कांची कलाप बलय हार नूपुर शोभिता, और दिव्य मुक्ता के हार पहने हुए हैं, और चरणों में नूपुर है, दो नूपुर एक एक चरणों में। तो इस तरह से चरणों के नूपुर द्वारा, हार द्वारा, बलय और कांची कलाप द्वारा भगवान की शोभा बहुत बढ़ रही है। कौस्तुभा भरणाम लक्ष्मीम विभ्रतिम वनमालिनीम, कौस्तुभ आभरणम, कौस्तुभ आभरणम कंठे जस्य ताम, जिसके कंठ में कौस्तुभ मणि का आभरण है, गहना लगाए हुए भगवान। वास्तव में वर्णन करने में अब स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करने में पटाह लग रहा है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी इसी तरह से वर्णन कर रहे हैं। श्री मूर्ति कह दिए तो वह गले में कंठ में कौस्तुभ मणि पहनी है, वह श्री मूर्ति। कौस्तुभा भरणाम लक्ष्मीम विभ्रति, और अपने वक्षस्थल पर वह लक्ष्मी को धारण की हुई है। श्रीवत्स जहां पर वहां श्री लक्ष्मी जी को धारण की। वनमालिनीम वनमाला अस्य अस्ति इति वनमालिनीम वनमालिनी ताम, जो वनमाला धारण की हुई है वह श्री मूर्ति। वनमालिनीम वनमाला अस्य अस्ति इति ताम, वनमाला इसको है, वनमाला धारण की हुई है मतलब पहनी हुई है, गले में वनमाला लटक रही है। तो सुदर्शनाद भी स्वाश्रय मूर्ति मत भी उपासिता, और यह श्री मूर्ति अपने सुदर्शन आदि अस्त्रों के द्वारा उपासित है। पुरुष के रूप में सारे अस्त्र भगवान की सेवा कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र, कौमुदकी गदा, पंचजन्य शंख आदि जो अस्त्र हैं भगवान के, तो मूर्तिमान होकर के सेवा कर रहे हैं। चक्र के रूप में नहीं है, वह पुरुष के रूप में भगवत पार्षद हैं चक्र सुदर्शन। तो वे सब मूर्तिमती हो, मूर्तिमान होकर के इस श्रीमूर्ति की सेवा कर रहे हैं। उपासिता ऐसे प्रभु को, भगवान को, तुष्टाव देव प्रवर ससर्व पुरुषम परम, ऐसे परम पुरुष श्री विष्णु को श्री ब्रह्मा जी शिव जी के साथ तुष्टाव संतुष्ट करने लगे, स्तुति करने लगे। फिर से जब भगवान प्रकट नहीं हुए थे तो उसके पहले भी स्तुति किए, और प्रकट होने के बाद भी स्तुति कर रहे। देखते हैं मंदिरों में भक्त लोग भगवान का पट नहीं खुला रहता है तब भी कीर्तन करते हैं, और पट खुलने के बाद प्रणाम और फिर कीर्तन है ना। यही है वैष्णव जीवन, भगवान सामने हो या न हो, कीर्तन तो चलता ही रहेगा। भगवान का पट बंद रहता है तब भी कीर्तन होता रहता है, और भगवान का पट खुलता है तो फिर से गोविंदम आदि पुरुषोत्तम हम जाने कीर्तन। ये सब परंपराएं हैं, श्री ब्रह्मा जी यही कर रहे हैं। समस्त देवताओं के साथ स्तुति किए जब भगवान प्रकट नहीं थे, और प्रकट हुए तो फिर स्तुति कर रहे हैं। तुष्टाव देव प्रवरह, देव प्रवरह भगवान शिव के लिए भी है और श्री ब्रह्मा जी के लिए भी है, दोनों में प्रयुक्त हो। सर्वामर गणै साकम सर्वांगै रवनीम गतै, भगवान ने ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे तो देवता क्या अंधे हो गए थे, चकचका गए थे, उसके बारे में कुछ प्रश्न होगा ना, देवता क्या कर रहे थे? नहीं, वे प्रणाम किए, देवता सब प्रणाम किए और इसके बाद उठे, सब स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी के साथ, कीर्तन गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्व अमर गणै, समस्त देवताओं के साथ, देवता कैसे हैं, सर्वांगै अवनिम गतै, देवता पहले तो ऐसे हुए कि सर्वांगै अवनिम गतै, सभी अंगों से देवता अवनिम गतै पृथ्वी पर सो गए थे, उन्होंने प्रणाम किए थे, सो नहीं गए थे, साष्टांग से भी बेहतर प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि सर्व अंग धरती में सटा हुआ था, बिल्कुल लोट गए, सर्वांग ही अवनिम गतै, सभी अंग उनके पृथ्वी पर थे। स्तुति करते समय नहीं, सोया हुआ आदमी स्तुति क्या करेगा, लेकिन उसके पहले इस तरह से नम्र भाव से सब प्रणाम किए थे और इसके बाद स्तुति करने लगे। अथवा हो सकता है कि देवता लोग प्रणाम गिरे गिरे ही बोल रहे होंगे, जो भी हो सर्वांगै रवनीम गतै, और ब्रह्मा जी भगवान शिव मुख्य रूप से स्तुति कर रहे हैं। स्तुति इस तरह से है, श्री ब्रह्मो वाच, सुखदेव गोस्वामी केवल ब्रह्मा जी को कह रहे हैं तो, और कह दिए कि सारे देवता हैं और ससर्व श्री शिव जी हैं। अजात जन्म स्थित संयमाय अगुणाय निर्माण सुखार्णवाय अणो रणिम में परिगण्य धाम में महानुभावाय नमो नमस्ते ते नमः नमः। हे प्रभु, आपको प्रणाम है, प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ये विप्सा दो बार जब प्रयोग होता है तो उसको कहते हैं संस्कृत में, इसका अर्थ है कि आपको अनंत अनंत बार प्रणाम है, प्रणाम है। ते नमः नमः, आपको प्रणाम है, प्रणाम है। भगवान के गुण गा रहे, कैसे हैं भगवान, अजात जन्म स्थित संयमाय, जिनका जन्म स्थिति और संयम जन्म ही नहीं लिया, अद्भुत शब्द का प्रयोग कर रहे, अजात जन्म स्थित संयमाय। सृष्टि में तीन स्थिति होते, किसी भी जीव के सृष्टि होते तो जन्म होता है और कुछ देर रहता है स्थिति और संयम, संयम का अर्थ मृत्यु। लेकिन भगवान का अजात नहीं जन्म लिया है, जन्म स्थिति और संयम, जिनका कभी जन्म नहीं होता है और न तो कोई रहते हैं और न तो उनका संयम है, उपसंहार है, अजात जन्म स्थित संयम आया। तो ठीक है, अगर ये बात मान लीजिए ठीक है, भगवान का जन्म नहीं है और उपसंहार नहीं है, संयम नहीं है, लेकिन तो स्थिति तो है ना, नहीं है, स्थिति नहीं है। हंस गुह स्तुति में दक्ष प्रजापति कहते हैं कि आपके विषय में यह कहना बेकार है कि नास्ति अस्ति आप हैं, यह भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि स्थिति उसी वस्तु की होती है जो चालू हुई है, चालू हुई है कुछ डेट तक, जन्म और मृत्यु के बीच में रहेगी तो उसको स्थिति कहते हैं। लेकिन भगवान का तो कोई जन्म ही नहीं है और उनका कोई उपसंहार नहीं है, मृत्यु नहीं है। इस शब्द के द्वारा ये कहा नहीं जा सकता कि वे हैं, इसका अर्थ है नहीं कि नहीं है। ये तीनों प्राकृत स्थितियां भगवान की नहीं, अजात जन्म स्थित संयम आया। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका अर्थ करते हैं अ का अर्थ है नहीं और जात अजात जन्म स्थिति संयम आया। हाँ, अ माने नहीं, जात माने हुआ है, उत्पन्न हुआ है। जिनके स्थिति जन्म और स्थिति, जन्म और लीला का संयम कभी नहीं है, उपसंहार नहीं। अजात जन्म स्थित संयम आया, जन्म स्थितयो हो संयम न जात संयम आया, वैसे अर्थ करते हैं। इसमें लिखा गया है जदवा न जातो जन्म स्थितयो संयम उपरमो जस्य इति, जिनके जन्म और लीला का कभी संयम नहीं है, उपसंहार नहीं है, नित्य लीला है। कृष्ण रामाद्य अवताराणाम जन्म स्थिति और नित्यत्व स्थिति र कर्म का जातस्य चेतनस्य न संभवती इति कर्मलोके नित्यत्व। और भगवान का जन्म नहीं है, स्थिति नहीं, स्थिति नहीं है, तो वास्तव में चेतन वस्तु जो है जीव भी इस तरह का है। अगर प्राकृतिक शरीर से अलग करके जीव को देखा जाए तो उसका भी जन्म नहीं है, उसकी भी मृत्यु नहीं है। तो भगवान का कभी प्रारंभ नहीं है, जन्म नहीं है और स्थिति नहीं है, संयम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगुणाय, भगवान समस्त भौतिक पदार्थों से परे हैं। गुण कहा जाता है भौतिक वस्तुओं को और अगुण का अर्थ है भगवान भौतिक नहीं है। उनका धाम, उनके परिकर, उनका देह, उनकी लीलाएं कोई भी प्राकृत नहीं है, इसलिए उनको अगुण कहते हैं, निर्गुण, निर्गुण है, अगुण आया। निर्वाण सुखारणवाय, और वे निर्वाण सुख के समुद्र है, महासागर है। निर्वाण सुख किसको कहते हैं? निर्वाण, बाण का अर्थ है संस्कृत में दुख, और निर्वाण का अर्थ है दुख से जो सुख कटा हुआ नहीं है। निर्दुख सुख को निर्वाण सुख कहते हैं। निर्वाण सुख के अर्थात मोक्ष सुख के, दिव्य सुख के भगवान महासमुद्र है। सुख के महासमुद्र निर्वाण सुख, निर्वाण है सुखारण वाय, अरण माने समुद्र। ऐसे सुख के भगवान समुद्र हैं जिसमें कोई दुख का लेश भी नहीं है। इस संसार में कोई सुख है अगर मनुष्य के माइंड के अनुसार, मन के अनुसार धारणा के सुख है, तो वह सुख भी दुख से निर्भिन्न है, कटा हुआ है, बल्कि ज्यादा दुख है, सुख बहुत कम है। वो तो सुख है ही नहीं, केवल मानसिक भावना में मान लेता है व्यक्ति, वो मन की तरंग है, उस मान लेता है कि सुख है, सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है। पर अगर सुख थोड़े देर के लिए है भी तो अनेक दुखों से ग्रस्त सुख है, उसको निर्वाण सुख नहीं कह सकते। दुख शून्य दिव्य सुख के समुद्र हैं भगवान। ऐसे प्रभु को हम नमस्कार कर रहे हैं, अणो रणिम ने, और जो अणु से भी अणु हैं, छोटे से भी छोटे हैं, अर्थात दुर्गेय हैं, उनके बारे में जान पाना बहुत कठिन है। और परिगण ले धाम ने, और भगवान के धाम, धाम का यहां है अर्थ स्वरूप शरीर, भगवान का धाम अपरिगण है, अपरिच्छिन्न है, देश और काल द्वारा या वस्तु द्वारा अपरिच्छिन्न है। परिच्छिन्न का क्या अर्थ होता है? परिच्छिन्न का अर्थ होता है जो चारों तरफ से सीमित हो, जैसे पुस्तक है तो इसको नापा जा सकता है कि इतना इंच चौड़ा है, लंबा है, इसको कहा जाए परिच्छिन्न है। हम लोग कहते हैं परिच्छिन्न है, इस संसार में जो कुछ भी है सब परिच्छिन्न है, लेकिन भगवान का जो देह है वो परिच्छिन्न नहीं है, वह अनंत है, विभु है। उनके भीतर सारा जगत अटा हुआ है, उनके एक रोम कूप में सब कुछ अटा हुआ है, और वे अब जिन वस्तुओं से उनको मापा जाएगा कि भाई भगवान इतने दूर में है, ये है वो है, लेकिन ये सारी वस्तुएं ही उनके भीतर हैं, और वे उन वस्तुओं में सब जगह ओतप्रोत हैं, समाये हुए अनुप्रविष्ट हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके भीतर भगवान न हो, और ऐसा कोई जगह नहीं है जहां वे न हो, ऐसा कोई काल नहीं है जब वो न हो। सर्वत्र हैं, सब समय हैं, सर्वव्यापक हैं, विभु हैं, सर्वांतरजामी हैं, बल्कि उन वस्तुओं के रूप में भी वही है, उन्हीं की शक्ति है। इस बात को श्री ब्रह्मा जी यहां कह रहे हैं। तो अपरिगण्य धाम में, और एक और अर्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जिनके धाम शरीर अपरिगण असंख्य है, असंख्य अवतार है भगवान के, गिनती नहीं की जा सकती कि कितना अवतार है भगवान के, अनंत अनंत अवतार हैं। पहले तो उनका रूप ही गिनना असंभव है। अपरिगण्य धाम में महानुभाव आया, जिनका अनुभव, जिनका प्रभाव, जिनका ऐश्वर्य महा है, महान है, ऐसे प्रभु को हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। भगवान को बारंबार प्रणाम करना यह जीवन की शोभा है। भगवान को प्रणाम करने जैसा सुकृत कुछ है नहीं। प्रणाम करने वाले का भगवान दुख हर लेते हैं, प्रणामो दुख समना। हम लोगों का जीवन में अनुभव है कि भगवान को प्रणाम करने से बड़े बड़े दुख चले जाते हैं, इसलिए किसी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। किसी रोग से या किसी और कारण से दुख है, दुख स्वाभाविक है संसार में, परंतु भगवान को प्रणाम करने से वो दुख चला जाता है। प्रणामो दुख समन, भगवान को प्रणाम करने से दुख का समन होता है। प्रणाम की विशेषता है, विश्व के जो सबसे बड़े देवता हैं, वे अन्य समस्त देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव, भगवान श्रीहरि को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। महान भाव आय नमो नमस्ते, हे महान ऐश्वर्यशाली, आपको बारंबार प्रणाम है। भगवान अगुण है, अगुण का अर्थ यह है कि समस्त प्राकृत गुणों से, हे गुणों से विवर्जित है। प्राकृत कुछ भी विशेषता भगवान में नहीं है, अप्राकृत अनंत गुण है। श्रीपद रामानुजाचार्य बारंबार इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि समस्त कल्याण गुण गणों के अरणव हैं भगवान, जितने शुभ गुण हैं सब भगवान में हैं। कभी कभी लोग पूछा करते हैं, तर्क करते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है सब भगवान से आया है, तो ये और चोरी करना क्या का बुरे जो गुण है ये सब भगवान से आए हैं? नहीं, ये सब भगवान से नहीं आए हैं। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, किस शक्ति का विकार है ये संसार और यहां कूड़ा कचरा है, सब भगवान से आया हुआ है। जरा सोचिए, किसी मनुष्य में, किसी जीव में बुरी आदतें होती है, कई प्रकार के दोष होते हैं, सब भगवान से नहीं आए हैं, भगवान की बहिरंगा माया शक्ति से आए हुए हैं, भगवान से नहीं आए हैं। तो भगवान से तो इस तरह की अनंत शक्तियां विरुद्ध निकलती रहती हैं, माया शक्ति, जड़ शक्ति, इसके साथ स्पिरिचुअल शक्ति है, तटस्था शक्ति है। एक पृथ्वी है, पृथ्वी से कितनी शक्तियां निकलती हैं, गन्ना निकलता है उसी स्थान पर और मिर्च निकलता है, तो क्या गुड़ के बदले मिर्च खाएंगे? मिर्च खाएंगे लेकिन गुड़ के बदले नहीं खाएंगे ना। और ये कहे नहीं, दोनों पृथ्वी का विकार है, पृथ्वी से निकला है, इसलिए इसमें अंतर नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु बचपन में ही इस फिलॉसफी को मां को समझाए लीला पर। माता जी ने उनको खाई और संदेश दिया खाने के लिए, फिर वे छोड़कर के माटी खाने लगे। तब तक माता सची आई और छीन ली हाथ से, माटी खा रहे थे और डांटी, अरे माटी क्यों खा रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मां ये जो खई है, लावा है चावल का, ये भी माटी से निकला है, संदेश भी माटी से निकला है, तो यह माटी से यह माटी की भेद विचार, ये भी माटी है, वो भी माटी है, तो इसको न खाकर डायरेक्ट ही माटी खाए तो क्या भेद, क्या बात है? तब माता सती डांटती है, अरे मूर्ख, तुमको कौन ये सब दर्शन सिखा दिया? माटी माटी में भेद है कि नहीं? देखो, पक्का घड़ा भी माटी है और कच्चा घड़ा भी माटी है, तो पक्के घड़े में पानी रखने पर वो रहता है, और उसी को जमीन पर रखोगे तो रहेगा, तो पानी सूख जाएगा। कच्चा घड़ा में पानी रखा जाएगा तो घड़ा भी भीला जाएगा, वो बिखर जाएगा, विदीर्ण हो जाएगा। तो अंतर हुआ कि नहीं? माटी माटी में अंतर है ना। एक माटी खाओगे तो पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, और ये माटी खाओगे खाई आदि तो शरीर पुष्ट होगा, तो अंतर है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तू शुरू में ही क्यों नहीं हमको बताया? अरे और कौन बूढ़े हो गया हो कि अब बहुत समय बीत गया है? लेकिन भगवान इस बात को बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि बचपन में ही यह फिलॉसफी बतानी चाहिए बच्चों को, कि भगवान के ऐसे अनंत गुण हैं और उनकी अनंत शक्तियां हैं, शक्तियों का परिणाम इस जगत में होता है, नहीं कि किसी की बुराई देखकर कहे सब कृष्ण से आ रहा है, सब कृष्ण से आ रहा है, ये गलत है बोलना। सब कुछ कृष्ण से नहीं आ रहा है, समस्त हे गुण विवर्जित, श्रीपद रामानुजाचार्य कहते हैं, और समस्त कल्याण गुणात्मक भगवान का शरीर है, सारे शुभ गुण हैं उनमें, और हे गुण, हे मतलब घृणित, जिसको छोड़ना चाहिए, ये सब नहीं है उनमें। तो अगुणाय का ये अर्थ है कि प्राकृत विशेषताएं में नहीं है, लेकिन समस्त अप्राकृत गुणों से भगवान विभूषित और मोक्ष सुख के महासागर। अब इसके बाद श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, रूपम तवैतत् पुरुषर सभेज्यम श्रेयोर्थिभिर्वैदिकतांत्रिकेण योगे न धातः सहन स्त्रीलोकान पश्याम मुस्मिन्नुह विश्वमूर्तौ। हे धातः, हे इस जगत की सृष्टि करने वाले, हे प्रभु, तव एतत् रूपम, आपका यह रूप जो हम लोगों के आंखों के सामने प्रकट हुआ है, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषोत्तम, हे समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषेषु श्रेष्ठ, ये अर्थ नहीं है, पुरुषाणाम श्रेष्ठ, भगवान सभी पुरुषों में श्रेष्ठ है, ऐसी बात नहीं है। तो पुरुषों में ही वे एक माने जाएंगे, भगवान ये सब पुरुष नहीं है जो देवता है या मनुष्य है। पुरुषोत्तम का अर्थ है पुरुषाणाम उत्तम, पुरुषोत्तम, जो समस्त पुरुषों से उत्तम है। भगवान गीता में स्वयं ही कहते हैं, पंद्रहवें अध्याय में, जस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। मैं क्षर से भी, क्षर सर्वाणी भूतानि, भगवान ने स्वयं कहा है, जो प्राकृत जगत में जीव है, मायाबद्ध है, उनको क्षर कहा गया, क्षर सर्वाणी भूतानि। और अक्षर जो भगवान के धाम में है, परिकर भगवान के वो है। तो भगवान कहते हैं, जस्मात् क्षरम अतीतो हम, क्षरम अतीत, मैं क्षर से अतीत हूं, और अक्षरादपि च उत्तम, और अक्षर जो है अप्राकृत धाम में भगवान के परिकर है, इनसे मैं उत्तम हूं। इसका एक और भी अर्थ हुआ है, मैं क्षर से अतीत हूं, अक्षर से उत्तम हूं, इसीलिए लोक और वेद में दुनिया में सब जगह मैं और शास्त्रों में भी मैं पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हूं। तस्मिन् लोके वेद च प्रसिद्ध प्रथिता पुरुषोत्तम, प्रथित पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी हैं, भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम। कभी कभी यह अर्थ किया जाता है कि पुरुषों में उत्तम, तो वो गलत अर्थ है। जैसे 1000 पुरुष हैं तो उसमें सबसे श्रेष्ठ नहीं, भगवान इन सबसे विलक्षण है। तो हे पुरुष ऋषभ, हे पुरुष ऋषभ, हे पुरुषोत्तम, आपका यह रूप कल्याण चाहने वाले श्रेयो अर्थी भी जो अपना श्रेय चाहते हैं ऐसे लोगों के द्वारा सदा से पूज्य रहा है, अनादिकाल से और अनंत काल तक पूज्य रहेगा, इसकी अर्चना करते हैं। अपना हित चाहने वाले, अपना श्रेय चाहने वाले, इसकी पूजा करते हैं। ये अनादिकाल से है और अनादिकाल से पूज्य है, दो तरह से पूजा करते हैं, वैदिक मार्ग से और पंचरात्र मार्ग से पूजा करते हैं। यहां वैदिक मार्ग का अर्थ है श्रवण कीर्तन, इसको वैदिक मार्ग कहते हैं। भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, भगवान की कथा कहना सुनना, ये सब वैदिक मार्ग है। और तांत्रिक है, इस समय क्यों मानने लगे, इस समय जरूरत नहीं है, कथा बंद हो तब बांधिए। दो धारा है हम वैष्णवों में, और हम लोग तो दोनों को फॉलो करते हैं। नारद पंचरात्र में है मंदिर बनाना, मंदिर बना करके भगवान की सेवा पूजा की व्यवस्था करना, आरती करना, भगवान के लिए बगीचा लगाना, फूल बनाना, माला बनाना, भगवान को अर्पित करना, भगवान को अनेक तरह से भोग अर्पित करना, रथयात्रा निकालना, विशेष पर्व पर भगवान का की शोभा यात्रा आदि निकालना, ये नारद पंचरात्रिक विधि है, इसको तांत्रिक विधि यहां पर कहा गया। और भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन मुख्य रूप से करना, कीर्तन करना, भगवान के गुणों का वर्णन करना, ये वेद विधि है। तो हम लोग दोनों करते हैं। प्राय वैष्णव में देखा जाता है कि भगवान की पूजा भी चलती है, कीर्तन भी चलता है। तो कीर्तन ये वैदिक विधि है और पूजा तांत्रिक विधि है। नारद पंचरात्र को ही तंत्र शास्त्र कहते हैं। तंत्रम सात्वतमाश्चष्ट निष्कर्म्यम कर्मणाम जत। वास्तव देखने में वो लगता है कि कर्म है, लेकिन कर्म नहीं है। भगवान की पूजा करना, भगवान की यात्रा निकालना, मंदिर बनाना, ये कर्म बंधनों से मुक्त कर देता है। निष्कर्म्यम कर्मणाम जत, कर्मों से ही निष्कर्म को प्राप्त कराता है। तो नारद जी ने इसका प्रवर्तन किया है। हे प्रभु, आपका यह रूप सदा से आराध्य है, जो भी अपना हित चाहते हैं, श्रेयो अर्थी भी, जो श्रेय के अर्थी हैं, कल्याणकामी हैं, चाहते हैं कल्याण, तो वे लोग आपके इस रूप का की पूजा करते हैं, इसका भजन करते हैं। कितना क्लियर है, जो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं उनके लिए यहां पर ब्रह्मा जी का उद्गार पढ़ने योग्य है। इसका अर्थ है, अगर मूर्ति पूजा नहीं मानते हो तो चौपट तुम अपना कल्याण भी नहीं चाहते, कुछ अपना कल्याण नहीं कर सकते। जो कल्याण चाहता है उसके लिए यही उपाय है। श्रेय का क्या अर्थ है? श्रेय का अर्थ है इस संसार में भी सफलता, सुख है, और अंत में ये देह छोड़ करके भगवान के धाम में जाना, यह है श्रेय, परम श्रेय। जो भी श्रेय चाहते हैं वे इस रूप की उपासना करते हैं। ये ब्रह्मा जी का उद्गार है। तो योगेन धातः सहनस् त्रिलोकान पश्याम मुस्मिन् विश्वमूर्तम्। कैसे उपासना करते हैं? वैदिक तांत्रिकेण योगेन। योग का अर्थ है उपाय, वैदिक उपाय और तांत्रिक उपाय। जीवन के अंत में जैसे जैसे जीवन बीतता जाता है तो तांत्रिक कम होता जाता है और वैदिक प्रथाएं बढ़ती जाती है। भगवान का स्मरण करना, जप करना, भगवान के बारे में बोलना, कीर्तन करना, यही प्रधान होता जाता है। परंतु प्रारंभ में भक्तों के लिए यह श्री विग्रह की आराधना बहुत जरूरी है, अन्यथा वो सब फ्री रहते हैं। अब किसी को कह दीजिए कि आप वेद विधि से भगवान का स्मरण कीजिए, भजन कीजिए, तो क्या करेगा? जब मंगला आरती का नियम है तब तो आकर भगवान के सामने दर्शन करता है, कीर्तन गाता है, नहीं तो छोड़ दिया जाए अलग अलग शब्द स्मरण कीजिए, भजन कीजिए, तो सोएगा या क्या स्मरण करेगा? इसीलिए आचार्यगण श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य होते हैं, वे सबको इस नारद पंचरात्र विधि में लगाते हैं। इस तरह से भक्ति होती है। तो बहुत सुंदर शब्द ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि श्रेय अर्थी भी, जो श्रेय के अर्थी हैं, सब प्रकार से अपना कल्याण चाहते हैं, वे लोग आपके इस रूप की उपासना करते हैं। इज्जम इज्जा का तो पूजा, इसकी पूजा करते हैं। रूपम तवैतत पुरुषार्थ भेज्यम, यह रूप आपका श्रेय कामी पुरुषों के द्वारा पूज्य है और नारद पंचरात्र के उपाय से या वेद वैदिक उपाय से। तो हे धाता, हे विश्व की सृष्टि करने वाले, न सह अस्मन सह, हम देखते हैं इसमें कि हम लोगों के साथ त्रिलोका तीनों लोक अमुस्मिन विश्वमूर्तव, ऊ का अर्थ नू का अर्थ है अहो और ह का अर्थ है स्पष्ट। बहुत आश्चर्य की बात है, अहो मैं तो सबको आपके इस रूप के भीतर देख रहा हूं। विश्वमूर्तव, विश्वम मूर्तव जस्य, मूर्तव जस्य, ये सारा विश्व आपके भीतर है। ब्रह्मा जी नू और ह कह रहे हैं, नू का अर्थ अहो और ह का अर्थ साफ साफ स्पष्ट। मैं तो सबको, अपने को भी और श्री शिव जी को भी, इंद्रादि देवताओं को और सारे जगत को आपके भीतर देख रहा हूं। पश्यामि अमुस्मिन, इसी रूप के भीतर मैं सबको देख रहा हूं। ये बड़े आनंद की बात है, श्री ब्रह्मा जी को यह सब दिखाई दे रहा है कि तीनों लोक में जितने जीव हैं, वस्तुएं हैं, सब आपके भीतर हैं। मैं भी हूं, शिव जी भी हैं, देवता हैं। देखिए कितना स्पष्ट है, श्लोक पढ़ करके समझा जा सकता है। रूपम तवैतत पुरुषर्थ भेज्यम, आपका यह रूप, तव एतत रूपम, यह रूप। ऐसा नहीं कि कोई ये कल्पना करे कि हाँ कोई रूप होगा जिसके भीतर सब भगवान जीव रहते हैं। प्राय लोग ये कहते हैं भगवान निराकार है, निराकार के भीतर सारा संसार है। नहीं, सारा जगत इस रूप के भीतर है। अमुस्मिन रूपे पश्यामि, मैं देख रहा हूं। इज्यम कह अर्थ सदा पूज्यम, सदा से पूज्य है। अतो नैव इदानीम अपूर्वम जातमिति भाव, यह है आपका रूप, आज का नहीं है, जन्म लिया है, पहले नहीं था और आज हुआ है, आज जन्म लिया है, अनादिकाल से है। आपकी यह श्रीमूर्ति सनातनी है, नित्या है। अब सारा विश्व और विश्व में जितने भी जीव हैं, सारी वस्तुएं, सब ब्रह्मा जी कह रहे हैं त्वयि अग्रयासीत् त्वयि मध्ययासीत्। अग्रे सृष्टि के पूर्व, पहले त्वयि एव आसीत्, आप में ही संसार था, और त्वयि मध्य आसीत्, और मध्य में भी आप में है, और त्वयि अंत आसीत्, और अंत होने पर भी आप में रहता है। सृष्टि के पहले भी सारा संसार आप में था, और सृष्टि के मध्य में सब समय में सब आप में रहते हैं। त्वयि अंत आसीत्, अंत में आपके भीतर आते हैं इदम आत्मतंत्र है, आप आत्मतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी पर आश्रित नहीं है, आप किसी पर आश्रित नहीं है, किसी के भीतर नहीं है, और सारा संसार सब लोग आप पर आश्रित है पहले से ही। तो यज्ञ आश्रित, तो मध्य आश्रित, तो अंत आश्रित, इदमात्मतंत्र है। तोमादिरंतो जगतो से मध्यम परस घटस्य मृतस्ने में परह परस्मा तुम अश्च जगत आदि अंत मध्यम च। आपके भीतर संसार पहले से ही था, बीच में भी है, अंत में भी रहता है, और आप ही जगत के आदि हैं, अंत हैं, मध्य हैं। जैसे घड़े के भीतर शुरू में भी माटी है, जब घड़ा बना है तब भी वो माटी ही है, और घड़ा नष्ट हो जाता है तो माटी ही रहेगा। इसका अर्थ यह है कि भगवान उपादान कारण इस जगत, ये भी है उपादान। जिस वस्तु से कोई वस्तु बनी है तो उस मूल कॉज को उपादान कहते हैं। जो घड़ा बना है तो घड़ा पहले भी मिट्टी था, घड़ा के रूप में भी मिट्टी है, और घड़ा बिखर जाएगा तो मिट्टी ही है। मृतस्ना कहते हैं मिट्टी को, घटस्य मृतस्ना इव परह परस्मा। तो यह बात कहने पर एक भगवान में विकारित्व दोष आता है, तो घड़ा की तरह वे फूट जाएंगे क्या, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए परह परस्मा, आप परस्मा परह, पर से भी पर हैं। परस्मत का अर्थ होता है बड़े, पर से भी पर से भी पर। वास्तव में आप कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, इन सब विकारों से रहित है, आप पर से भी पर है। अद्भुत है, अद्वितीय है, भगवान एक ही व्यक्ति हैं। और इस संसार में सभी वस्तुएं उनसे उत्पन्न होती हैं, पर फिर भी इन वस्तुओं से परे हैं, ये नहीं है। यदि भगवान से सारा जगत उत्पन्न हुआ है तो इसमें से कोई चीज भगवान नहीं है, न भगवान पत्थर है, न लकड़ी है, न माटी है, नहीं है, बल्कि इससे पर जीव है। जीव है, परा प्रकृति है, भगवान गीता में कहते हैं परस तस्मात् भावेन पर। अप्रेयम इतस्तन्यम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम महाबाहो जजेदम धारेते जगत। इस जड़ जगत से परे जीव है, उसको पर कहते हैं। लेकिन भगवान पर से भी पर है, परस्मात् का अर्थ जीवादपि, जिनमें जो जीव है उससे मैं श्रेष्ठ हूं, परे हूं। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि जगत भगवान से प्रकट हुआ है तो इसमें से कोई भी वस्तु भी भगवान हो गया। भगवान इससे परे हैं, उपादान कारण है, निमित्त कारण है, अधिष्ठान है, लेकिन फिर भी इस जगत से परे हैं। अब श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप इस जगत में सब जगह प्रविष्ट हैं, अंतर्जामी परह परस्मात् कह करके भगवान के ब्रह्मत्व का वर्णन किया गया। तो ब्रह्म है, ब्रह्म का अर्थ कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, विकारी नहीं है, और इसके साथ ही साथ सर्वज्ञ हैं, सबके भीतर हैं, सब कुछ जानते हैं, परमात्मा हैं। तो भगवान के इस परमात्म गुण का वर्णन किया जा रहा है कि तोमायात्मा श्रया स्वयेदम निर्माय विश्वम तदनु प्रविष्ट पश्यंत जुक्ता मनसा मनीषिण गुण व्यवाये प्यगुणम विपश्चित। हे प्रभो, आप अपनी ही शक्ति माया के द्वारा, जो आप पर ही आश्रित है माया, ऐसी माया शक्ति के द्वारा विश्वम निर्माय, इस विश्व का निर्माण करके, विश्व में समस्त जीवों का, वस्तुओं का निर्माण करके, तद अनुप्रविष्ट, फिर उसमें आप प्रवेश किए हैं, जगत की सृष्टि करके और प्रत्येक जीव में, वस्तु में भगवान अनुप्रविष्ट है। जैसे स्वयं कहते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में हूं, सब जगह प्रविष्ट है, भगवान दूर नहीं है, यही है, बिल्कुल निकट है, अपने हृदय में भी है, सब जगह है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ सभी जीवों में है, इस जगत की सृष्टि करके, विश्व की सृष्टि करके तद अनुप्रविष्ट, किस शक्ति से सृष्टि किए हैं, माया, जिस शक्ति का नाम है माया शक्ति उसके, और उस स्वया 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 अपनी ही शक्ति है भगवान की, दूसरे की नहीं। इस संसार में कोई व्यक्ति कुछ निर्माण करता है तो वह अपनी ही शक्ति से कुछ नहीं बनाता है, दूसरे की शक्ति है। जैसे मान लीजिए कोई घर बनाया तो उसके लिए ईंट लेना पड़ता है, सीमेंट लेना पड़ता है, वो ईंट उसकी अपनी कोई विशेषता नहीं है, शक्ति का अर्थ होता है उत्पादन, वह उस व्यक्ति से उत्पन्न नहीं हुआ है, दूसरे की शक्ति से वो घर बना रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन भगवान इस विश्व का निर्माण स्वया अपनी शक्ति से करते हैं, और वह उनकी शक्ति भगवान पर हमेशा आश्रित है, उनके अधीन है, भगवान से बाहर नहीं जा सकती है, भगवान के इशारे से काम करती है। माया अध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर अचर जीवों को पैदा कर रही है, सब वस्तुओं को। यह भी एक बहुत विशेषता है कि भगवान जगत की सृष्टि किया है माया शक्ति के द्वारा, तो भगवान के कंट्रोल से बाहर नहीं हो गया है, कुछ शक्ति बाहर नहीं हो गई है। यहां तो संसार में आप देखते हैं आदमी बच्चा पैदा करता है और कभी कभी एक बच्चा ही कंट्रोल से बाहर हो जाता है, आदमी दूसरों को कहता है माता तो क्या करे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, अपने मन से क्या ईश्वर बनोगे, पूरे विश्व में जितने जीव हैं और इनको कंट्रोल करने वाली माया शक्ति सब भगवान के अधीन है, आत्माश्रय भगवान के आश्रय में। ऐसा नहीं किस दिन भगवान को कोई शिकायत करके इतना सृष्टि किए हैं, कुछ लोग बिल्कुल आपके कंट्रोल से बाहर है, कौन कंट्रोल से बाहर है बताइए, कौन कंट्रोल से बाहर। एक बार फ्रांस में नेपोलियन नाम का व्यक्ति हुआ था, वो कहा कि इम्पॉसिबल वर्ड डिक्शनरी से बाहर करो, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, असंभव शब्द डिक्शनरी से निकालो, जैसा कहता था वो गया काल के गाल में, अंत में जेल में सड़ा मरा। कौन इस कंट्रोल से बाहर है, भगवान का अधीन कौन नहीं है, किसको जरा बुढ़ापा और मृत्युग्रस्त नहीं किए, सभी भगवान के अधीन है, भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधीन है और उस शक्ति उनके अधीन है। ऐसा नहीं है कि भगवान कि कंट्रोल से बाहर हो जाए, यहां पर तो कोई किसी की शक्ति है, किसी किसी की पत्नी भी कंट्रोल में नहीं है, रोवो ये करो वो करो क्या करो, जीव को अपनी स्थिति समझनी चाहिए ना कि मैं क्या हूं, अपना मन बस में नहीं है, अपनी इंद्रियां बस में नहीं है। हमने एक बार सुना था, हमारे गांव में एक बार व्यक्ति अपने पैर को कहा, पैर लंगड़ रहा था तो कहा कि हमारा पैर हमारा कहला में नहीं है, हमारा पैर ठीक से हमारे कंट्रोल में नहीं है, अभी अपने ढंग से चल रहा है, ढकस ढकस कर चल रहा है। यह स्थिति है जीव की, पर अनादिकाल से भगवान इस जगत में सभी जीवों को, माया को, सबको कंट्रोल में रखे हैं, उनकी शक्ति है, उन्होंने सब कुछ पैदा किया है, अपनी शक्ति से अपने पर आश्रित रहने वाली अपनी शक्ति से इस विश्व का निर्माण करके सब में भगवान प्रवेश किए। इसका प्रमाण है वेद, श्रुति प्रमाण है, लेकिन इसके साथ साथ ब्रह्मा जी कहते हैं कि महदअनुभव भी प्रमाण है, महान पुरुषों का अनुभव भी इसके साथ प्रमाण है। उसको कहते हैं पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुण व्यवाये प्यगुणम विपश्चिता। गुण व्यवाये जगत की सृष्टि होने पर भगवान इसके साथ रहते हैं, ऐसा नहीं कि सृष्टि करके वैकुंठ में जाकर के विश्राम कर रहे हैं। इस जगत की सृष्टि करके प्रत्येक जीव के साथ हैं, प्रत्येक वस्तु के भीतर हैं। इसको कहते हैं गुण देवाय, गुण में परिणाम होने पर, अच्छा सृष्टि होने पर वे रहते हैं जगत के साथ। मतलब कैसे रहते हैं? अगुणम, गुण संपर्क शून्य रहते हैं, माया के संपर्क से शून्य रहते हैं और सब में रहते हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता है, सबके साथ रहते हैं, सबके हृदय में है, फिर भी प्रकृति के गुणों से शून्य है, इसका कोई प्रभाव नहीं है। अगुणम, गुण व्यवाय अपि अगुणम, इसको कौन देखते हैं? मनीषिण पश्यन्ति, जुक्ता और विपश्चित। जुक्ता का अर्थ है जो जुक्त हैं, जिन्होंने अपने मन को वश में किया है, जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनको जुक्त कहा गया है। जुक्त का अर्थ जोड़े हुए हैं, मन को भगवान कृष्ण के चरण कमल में, वाणी को उनके गुणानुवाद में, कान को कथा में, और इस तरह अपने शरीर के प्रत्येक अंग को भगवान की सेवा आदि में लगाए हुए, उनको जुक्त कहते हैं। जुक्त का अर्थ होता है जो 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 कनेक्टेड है, जुक्ता, भगवान की भक्ति से जुक्त है। तो ऐसे लोग देखते हैं भगवान को, किस तरह से भगवान निर्गुण है, किस तरह अप्राकृत है, इस विश्व का सारा संचालन वही करते हैं, सब में है, फिर भी अछूता है प्रकृति के गुणों से, कोई प्रभाव नहीं होता। तो जुक्ता का अर्थ है भक्ति योग में लगे हुए, और मनीषी का अर्थ होता है विवेकी, विवेकिना, जिनमें विवेक है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या हमें करना चाहिए, इसको जो पूरा जानते हैं वो है मनीषी। और विपश्चित का अर्थ होता है शास्त्रज्ञ, जो वेद शास्त्र जानते हैं। तो युक्ता मनीषिण विपश्चित पश्यन्ति, इस बात को देखते हैं, अनुभव करते हैं कि भगवान इस जगत के कण कण में हैं, सबके भीतर हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल निर्गुण स्थिति में है, अप्राकृत है और सब कुछ चला रहे हैं। भगवान सब में स्मृति देते हैं, विस्मृति देते हैं और ज्ञान देते हैं, इतना रहते हुए भी भगवान सबके हृदय में रह रहे हैं, फिर भी अछूता है, एक आश्चर्यमय गुण है। वो गीता में भगवान कहते हैं मैं विद्वान ब्राह्मणों में भी हूं, हाथी में भी हूं, चंडाल में भी हूं, कुत्ता में भी हूं, भगवान सब जगह है। वो क्रिश्चियन में है, मुसलमान में है, हिंदू में है, सब जगह है, पर यहां के प्राकृतिक विकारों से उनका कोई प्रभाव नहीं। सबको स्मृति दे रहे हैं, सबको सब कुछ दे रहे हैं, और बाहर में भोजन आदि तो दे ही रहे हैं, भीतर रह करके सब नियमन कर रहे हैं। भगवान वास्तव में प्रत्येक प्राणी के भीतर रह करके कंट्रोल कर रहे हैं सबको, जैसे कार के भीतर बैठ करके ड्राइवर कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं कार को बाहर से पकड़ करके वो कंट्रोल करे, भीतर से ही कंट्रोल करता है। इस तरह भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। तदनु प्रविष्ट निर्माय विश्वम तदनु प्रविष्ट, तो पश्यन्ति जुक्ता मनसा मनीषिणो गुण विवाय त्यगुणम विपश्चित, जो विपश्चित है, शास्त्र को जानते हैं और इसके साथ ही साथ विवेकी हैं, और जो भक्ति योग में लगे हुए हैं, वे लोग इस बात को समझते हैं, साक्षात्कार करते हैं कि भगवान वास्तव में है सब जगह, और वे निर्गुण स्थिति में है, अप्राकृत। इसके साथ साथ भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मा जी अब ये कह रहे हैं, भगवान को पा लेते हैं, कैसे, कई उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। सर्वत्र हैं वे, सब जगह, और उनको पाया जा सकता है, दो बात कह रहे हैं कि मतलब भगवान सब जगह हैं और उनको उपाय से भक्ति योग के द्वारा पाया जा सकता है। कई दृष्टांत दे रहे हैं, जथाग्निमेधस अमृतम च गोसु भुव्यन्नमम्बु व्यमने च वृत्तिम योगैर मनुष्या अधियन्ति हि त्वाम गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति। जैसे मनुष्य ईंधन से आग निकाल लेते हैं, ईंधन में आग है ना, उसको निकाल लेते हैं, गायों से दूध निकाल लेते हैं। अमृतम, अमृतम का अर्थ दुग्धम, गाय का दूध अमृत है, तो गायों से अमृत निकाल लेते हैं, पृथ्वी से अन्न निकाल लेते हैं और पानी निकाल लेते हैं, और उद्यम से, व्यापार आदि से अपनी जीविका चला लेते हैं। इसी तरह से विद्वान पुरुष कवय गुणेश भगवान को इस प्राकृत जगत में ही खोज लेते हैं, क्योंकि भगवान है सब जगह। गुणेश बुद्धिया कवय बजनते, अपनी बुद्धि से, समझ से इसी जगत में पा लेते हैं। जो सबसे पहला उदाहरण है, जथाग्नि में धसी, जथा एधसी अग्नि, जैसे प्रत्येक काष्ठ में, ईंधन में आग है, आग है। अगर मान लीजिए लकड़ियों का अंबार यहां जमा किया जाए और थोड़ी सी आग उसमें लगाई जाए दिया सलाई से, तो एक दिन अग्नि प्रकट हो जाता है और प्रचंड रूप धारण करता है। तो दिया सलाई से वो नहीं निकला है, उस काष्ठ में पहले से ही अग्नि विद्यमान है जो प्रकट हो गया, केवल प्रकट किया गया, बाहर से वो आग नहीं आई, केवल प्रकट करने के लिए थोड़ा सा जलाया गया। लेकिन ईंधन में आग है, प्रकट हो गया। तो मनुष्य लोक में ईंधन में से वे आग पैदा करते हैं, क्योंकि देवता स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी, इसलिए मनुष्य कह रहे हैं। देखिए इस श्लोक, मनुष्य, मनुष्य लोक में इस तरह आग पैदा किया जाता है या खेती किया जाता है, इस तरह से पानी के लिए प्रयास करना पड़ता है। देवलोक में यह सब झंझट नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं ब्रह्मा जी की मनुष्य, मनुष्य लोग जैसे एधसी ईंधन में से अग्नि प्रकट करते हैं, रोज प्रकट करते हैं ना, और प्रकट वास्तव में मंथन द्वारा पहले होता था, लकड़ी को रगड़ते थे, रगड़ते रगड़ते आग उत्पन्न हो जाती थी, और आग उत्पन्न होकर लकड़ी में से आग उत्पन्न होती थी और फिर लकड़ी को ही जलाना चालू करते, बाहर से कोई आग नहीं है, तो लकड़ी में आग पहले से है तब तो प्रकट हुआ ना। इसी तरह इस संसार में कण कण में कृष्ण है, भगवान है, पर भक्ति योग के द्वारा रगड़ चाहिए, रगड़ना होगा बार बार, जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। माला घुमाते घुमाते वो अग्नि प्रकट हो जाएगा, भगवान का नाम लेते लेते, भगवान तो है ही। तो जैसे अग्नि का मन, काष्ठ का मंथन करके उसमें से आग उत्पन्न की जाती है, अग्नि उत्पन्न किया जाता है, इसी तरह से गुरु के उपदेश द्वारा, श्रवण कीर्तन करने से, भगवान की भक्ति करने से भगवान प्रकट होते हैं, उनका अनुभव होता है। पहले उनके बारे में सुनते हैं, मनन करते हैं, इसके बाद भगवान प्रकट होते हैं हृदय में, हृदय में प्रकट होते हैं तो आंखों के सामने भी प्रकट होते हैं। हृदय में प्रकट हुए भगवान मन में चिंतन होने लगा तो आंख से दर्शन होना दोनों एक ही चीज है। एक दिन भगवान आंखों के सामने भी आ जाते हैं। अभियंति, अभियंति का से प्राप्तवंति, प्राप्त करते हैं। तो जैसे मनुष्य अग्नि प्राप्त करते हैं ईंधन से, और गोसु अमृतम च, और गायों से, गायों में अमृत उत्पन्न करते हैं, गाय में अमृत उत्पन्न करते हैं, कैसे दोहना दिना, दोहन करते हैं, दुहते हैं, गाय गाभिन होती है फिर बच्चे को सामने करते हैं पहनाने के लिए, और इसके बाद दूहते हैं अमृत, गाय में दूध है ना। लेकिन ऐसे अगर दूहेंगे नहीं तो ऐसे कैसे पता चलेगा, कोई कहेगा नहीं गाय में दूध है। अच्छा, दूध दूह लिया गया तो दूध में जो आज्यम अमृतम, आज्यम वही अमृतम, घी को भी अमृत कहा गया है। किसी को दूध दे दीजिए 10-20 किलो और कहिए कि इसमें घी है, और वो मूर्ख मथना नहीं जानता है, उसको मथना नहीं जानता है, दही जमाना नहीं जानता है, कहाँ घी है, तो छछर दूध है केवल, जिसमें घी है नहीं। लेकिन जो व्यक्ति जानता है उसको दही जमाना और मथना जानता है, तो मथते मथते वो घी को प्रकट कर लेता है। पर जैसे घी प्रविष्ट है दूध के भीतर, पर मंथन करने से प्रकट होता है, तो इसी तरह से मनोमंथन से भगवान प्रकट होते हैं। मन को मथना होगा बारंबार, इसको कैसे मथेंगे, मथने का ये अर्थ है कि इसको बारंबार कृष्ण विषयक शब्दों में लाना चाहिए, कृष्ण की तरफ लाना चाहिए, घुमा फिरा करके पकड़ करके जैसे तैसे। ये चंचल है, ये जितना संसार में लगता है उतना भगवान में नहीं लगता है, इसका स्वभाव है ऐसा। चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थ बलवत दुर्लभ, लेकिन इसको बारंबार पकड़ना चाहिए अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास क्या? अभ्यास वही श्रवण कीर्तन का अभ्यास, विशेष करके भगवान के नाम के जप का अभ्यास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि वास्तव में भगवान के नाम को जपा जाए और वार्ता छोड़ करके, तो मन अस्थिर हो जाएगा, भगवान के रूप में आ ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर मनुष्य की कमजोरी है कि जप इस तरह से करता नहीं है, एक तो अखंड और दूसरे वार्ता आदि छोड़ करके। तो एक से एक साधन है बलवान, श्रीमद् भागवतम सुनना है, सुनना सुनना अनेक बार सुनना, अनेक बार पढ़ना, मन क्यों नहीं आएगा कृष्ण में, वो आ ही जाएगा। बारंबार सुनना बारंबार सुनना, बारंबार पढ़ना, भगवान को प्रणाम करना, दर्शन करना, इन सब उपायों से ये मन का मंथन होता है, उसको पकड़ करके लाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई दही मथने चले और एक आध बार घुमा करके छोड़ दे मंथन, तो इसमें घी निकल नहीं रहा है। कितने लोग कहते हैं मैं इतने वर्षों से भजन कर रहा हूं लेकिन मेरा मन भगवान में नहीं लगा, भजन क्या कर रहे हैं। तो कोई कहे मैं दही मथ रहा हूं और मथानी को वहां रह करके और रस्सी पकड़ करके खड़ा है, तो उसको चलाना होगा ना। कुछ देर मेहनत करके कंटिन्यूअस चलाएंगे तब वो प्रकट होगा, टाइम लगता है ना। इसी तरह से भगवान को प्रकट करने में टाइम लगेगा, वो तो है ही। जब हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है तो भगवान प्रकट होते हैं, पहले वो मन में प्रकट होते हैं, इसके बाद आंखों के सामने प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान है ये विश्वास तो करना चाहिए कि सब जगह है, हमारी भावनाओं को, हमारे भजन को सब देख रहे हैं, हमारे पास हैं। जो व्यक्ति इस तथ्य को जान जाएगा, सत्य को, कि भगवान सबके पास हैं, सब में है, तो वह तो पहले झूठ बोलना छोड़ देगा कि भगवान सब सुन ही रहे हैं। छिपा नहीं सकता है व्यक्ति। एक व्यक्ति से मैं कहा, वो शपथ खा लिया था, एक लड़का था, तो मैं पूछा, कह रहे तुम शपथ खा रहे हो, कहे भगवान की शपथ हो, महाराज जी मैं पहले भगवान कृष्ण कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा, उनको मैं कह दिया हूं, इसके बाद शपथ खा रहा। अच्छा, उनको कह दिया कि मैं शपथ खा रहा हूं, हमको माफ कीजिएगा, ये करिएगा। जो भी हो, भगवान साथ में है, छल कपट झूठ परपंच सब नहीं करना चाहिए और मंथन करना चाहिए। तो दूध से घी प्रकट किया जाएगा मंथन द्वारा, और भूमि अन्नम, जैसे पृथ्वी में अन्न है, लेकिन जब कर्षण करेंगे, खेती करेंगे, तब ना अन्न पैदा होगा, कोई फल लगेगा जो पेड़ लगाएंगे, या गेहूं होगा, चावल, बाजरा, ज्वार आदि, लाखों टन करोड़ों टन जो गल्ला पैदा होता है सब जगह, आखिर खेती करने से ना। कोई बुद्धू आदमी खेती करना न जाने और कहे कहां अन्न है, खुदाई करके देखो कहां पर बाजरा, कहां पर गेहूं की ढेरी है, कहां पर चना है, तो जो खोदते खोदते मर जाएगा, एक दाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि है उसमें पृथ्वी में अनंत भंडार है अन्न का, घास पात फल फूल सभी भरे पड़े हैं, अन्न भरा पड़ा है, पर उसको प्रकट करने का कोई उपाय है ना? खेती करेंगे, कृषि करेंगे, वो खेत जोतेंगे, जोत करके उसको समतल करेंगे, सिंचाई करेंगे, उसमें एक बीज बोएंगे तो वो सैकड़ों दाना लेकर के आता है। उपाय यह है जो शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में भगवद गीता में भगवान ने उपाय बताया है, ये वही भगवता प्रोक्ता उपाय याद उपलब्ध है। भगवान ने अपने श्रीमुख से कुछ उपाय बताया है, श्रीमुख से कि ऐसा करोगे तो मुझे पाओगे, ऐसा करोगे तो मुझे पाओगे। जैसे मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कृ मामे वैश्य सत्यं ते प्रति जाने प्रियोसी ने, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझमें मन लगाओ, मुझे प्रणाम करो। इन उपायों को जब व्यक्ति करेगा तब भगवान को पा ही जाएगा। तो ये तो विश्वास होना चाहिए भगवान जो कहे हैं वो सत्य है, शास्त्र प्रमाण है, और शास्त्र प्रमाण के साथ साथ महान भक्तों का भी प्रमाण है, यही किया है उन लोगों ने। तो इस तरह से उपाय करेगा तो पा जाएगा। जैसे खेती कोई करेगा, कृषि करेगा, तब तो उसको अन्न मिलेगा, पैदा हो जाएगा। वैसे कुछ लोग खेती कर दिए हैं, आजकल कुछ लोग खरीद खरीद करके खा रहे हैं, पर मूलतः ये ऐसी खेती है भक्ति जिसको स्वयं ही करना होगा। दूसरे के करने से हमारे भीतर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। तो जैसे अन्न उत्पन्न किया जाता है उपाय से, खेती करके, सुरक्षा करके, सिंचाई करके, जैसे तैसे, भगवान ने स्वयं इसी का उदाहरण दिया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्ति लता का उदाहरण दिया, लता को रोपना, कहां रोपना, उस बीज को हृदय में रोपना, और हृदय से ही वो लता बढ़ेगी। तो प्राकृत भोगों की आकांक्षा छोड़ करके, स्वर्ग आदि की आकांक्षा छोड़ करके, भुक्ति मुक्ति की गोलोक में जाकर कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष पर आरोहण करते, मतलब कृष्ण के अलावा और कुछ इच्छा नहीं रह जाती है भक्त के हृदय में। तो तहां विस्तारित है या फले प्रेम फल, यहां माली सींचे नित्य श्रवण आदि जल, वह इच्छा भक्त के हृदय में जो भक्ति है वो तो वहां प्रेम फल फलेगी, भगवान कृष्ण उसको खाएंगे, माली भी खाएगा। लेकिन माली का कर्तव्य है कि यहां वो नित्य ही श्रवण आदि जल, श्रवण कीर्तन आदि के जल से इसको सींचे, यहां माली सींचे नित्य श्रवण आदि जल, यही अपना कर्तव्य है। इसीलिए इसको अभिधेय कहा गया है, रात दिन यही करना है। जैसे खेती करने से अन्न प्राप्त होता है, कहीं कहीं हम लोग देखते हैं अंबार लगा होता है, ढेरी लगी हुई होती है अन्न की, खेती करने से हुआ। ऐसे ही भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा पर करने से। और अंबु जल, जल भी धरती से प्राप्त होता है, कैसे, खनन करने से, कुआं खोदने से या बोरिंग करने से। यदि बोरिंग करना कोई न जाने, कुआं खोदना न जाने तो मर जाएगा पानी के बिना, ऐसे पृथ्वी में तो कौन पानी है। अथवा घटी जंत्रेन उद्धरण, जल को नीचे से उठाते हैं, बुद्धि से जल प्राप्त होता है ना, नीचे जमीन में पानी है या तालाब में, उसको ले करके मशीन द्वारा ऊपर उठाते हैं, और ऊपर उठाकर देखते हैं घर घर में पानी की सप्लाई है, आराम से पानी मिल जाता है। अगर कोई उपाय न जाने कि मशीन से ऐसे पानी को ऊपर उठाया जाएगा तो वो आदमी तो मर जाएगा पानी के बिना, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। इसी तरह से भगवान कुछ ऐसे बेवकूफ है, कहते ईश्वर है ही नहीं, वास्तव में है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, और दूसरा उससे भी पक्का जो बेहूदे है, मूर्ख है, वो कहते ईश्वर है लेकिन निराकार है, वो तो ईश्वर को न मानने से भी ज्यादा खतरनाक है। ईश्वर निराकार, ये सब उदाहरण सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान का दिव्य अंग है, वो प्रकट हो सकते हैं, पर उपाय से पानी ऐसे प्राप्त होता है। और उद्यमने वृत्ति, और उद्यम से काम करने से जीविका चलती है, भोजन मिलता है, घर बनता है, सब कुछ चलता है, व्यापार आदि से एक जगह की वस्तु को लेकर के दूसरी जगह बेचते हैं, दिखने में लग रहा है काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें व्यक्ति अपनी जीविका कमाता है, जीविका प्राप्त होती है, कुछ बचत होती है, उसी जीविका चलती है। तो ये उपाय है जीविका चलाने का, ये नहीं किसी घर में पैसा पड़ा हो लूट करके डकैती करके जीविका चलाओ। उपाय है उद्यमने च वृत्ति, उद्यम से वृत्ति चलती है, जीविका चलती है। तो इसी तरह से जोगैर मनुष्या अभियंत ही त्वाम, जोगे जोगई भक्ति योग के अनेक उपकरणों से, जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णुम, ये सब उपायों से अधियंत ही तो आपको प्राप्त करते हैं। गुणेशु कहा, इस प्राकृतिक जगत में ही, इसी संसार में आपको अपनी बुद्धि से, भक्ति योग से भक्त आपको प्राप्त कर लेते हैं, कवि कहते हैं विद्वान। यही है बुद्धिमत्ता वास्तव, यही है बुद्धि। यहां शब्द ब्रह्मा जी दे रहे हैं कि बुद्धिया कवयो बदंती, भगवान को प्राप्त करते हैं और उनका वर्णन भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, बदंती भगवान के गुणों का प्रसार करते हैं, स्वयं तो भगवान को पाते ही हैं, भगवान के बारे में प्रसार करते हैं। इस तरह से भगवान की व्याख्या की जा रही है, भगवान सब जगह हैं और मिलते हैं उपायों से। अधियंती का अर्थ प्राप्तवंती, प्राप्त करते हैं, और बदंती च दूसरों को भी बताते हैं इस बात को, भगवान ऐसे है, ऐसे मिलेंगे, यही करना चाहिए। कितना स्पष्ट शब्द है अधियंति बदंती च। अथवा कवि लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि भगवान को इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। अनेक उपाय है भगवान को प्राप्त करने के, इसीलिए योग ही बहुवचन का प्रयोग किया गया है। बहुवचन का प्रयोग किया गया है भक्ति योग के अनेक अंगों के लिए। अपनी रुचि भेद के अनुसार कोई व्यक्ति किसी एक या दो या तीन या चार जो जितना चाहे भक्ति कर सकता है, पर एक भक्ति भी पर्याप्त है। कह एक अंग साधे, कह साधे बहु अंग, और भक्ति कैले क्रमे बाढ़े प्रेमे रतरंग, कोई एक अंग साधता है। जैसे महाराज परीक्षित ने श्रवण किया, वो सात दिन कीर्तन नहीं किए, केवल सुने, और श्रील सुखदेव को स्वामी कीर्तन कर रहे थे, है ना। वो सात दिन बोले ही, और परीक्षित महाराज सात दिन सुने। किसी किसी की भक्त की रुचि होती है भगवान के श्री विग्रह की सेवा करने की, वो उसके लिए पूर्ण है। किसी किसी की रुचि होती है श्रीमद् भागवतम पढ़ने की, वो उसके लिए परफेक्ट है। और किसी की भगवान के नाम जप में निष्ठा होती है, वो पूर्ण है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो करोगे तब ये फल देगा, नहीं तो नहीं देगा। अपने आप में वो पूरा है, भक्ति योग समर्थ है। इसलिए योग ही शब्द का प्रयोग किया गया। भक्ति योग अनेक प्रकार के हैं, और जैसे भी हो, जिस उपाय से भी हो, भगवान में मन को लगाना चाहिए, वो प्राप्त करेगा। अब भगवान के दर्शन का अभिनंदन कर रहे हैं। तम त्वाम वयम नाथ समुज्जिहानम सरोजना भाति चिरेप्सितार्थम दृष्ट्वा गता निर्वृतिमद्य सर्वे गजा दवार्ता इव गांगमं भर। हे नाथ, हे पद्मनाभ, आप हमारे पिता हैं, आपके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए सरोज नाभ संबोधन कर रहे हैं। हे नाथ, हे हमारे स्वामी, हे पद्मनाभ, सरोज नाभ, त्वाम आविर्भवंतम, देख करके दृष्टवा, आप जब हमारे सामने प्रकट हुए हैं, हे नाथ, हे पद्मनाभ, आप हमारे सामने प्रकट हुए हैं, आपको देख करके हम सब वैसे सुखी हो गए हैं जैसे दावाग्नि में जलता हुआ हाथी गंगा जी के शीतल धारा में सुख काम हो करता। हम लोग मर रहे थे, जल रहे हैं, बहुत दुख में हैं, लेकिन आपका दर्शन करने से सब दुख मिट गया। हे तम तम वयम नाथ समुज्जिहानम, समुज्जिहानम आविर्भवंतम, आप हमारे सामने प्रकट हुए हैं हंसते हुए सुंदर स्वरूप में, जबकि अति चिरेप्सितार्थम, आपकी खोज हम बहुत वर्षों से कर रहे थे, बहुत काल से, अति चिर इप्सित अर्थम, दीर्घ काल से, अनादि काल से हमारे आप ही इप्सित अर्थ हैं। इप्सित मतलब जिसकी चाह, इप्सा होती है, चाह होती है, आप हमारे परमार्थ हैं, असली वस्तु आप हैं, आपको पाने के लिए हम लोग बहुत काल से प्रयास कर रहे थे, तो ऐसे प्रभु आप हमारे सामने प्रकट हुए हैं, आपको देखते ही हमारे सारे दुख नष्ट हो गए। दृष्ट्वा गता निर्वृत्तिमद सर्वे वयम सर्वे, हम सभी आज निर्वृत्ति निर्दुखता को अर्थात परम सुख को प्राप्त हुए हैं। जैसे गजा दवारता हाथियों का समुदाय, मान लीजिए किसी जंगल में हिमालय में दवाग्नि में फंस गया है, दवाग्नि, दव कहते हैं लकड़ी को, वन को, वन में जो आग लगती है उसको दवाग्नि कहते हैं, दवाग्नि लग जाए, उसमें हाथियों का झुंड पड़ जाए और छटपटा करके भाग रहा हो, इधर उधर आंच लग रही है, लेकिन अकस्मात दैवयोग से गंगा जी का की धारा मिल जाए, इसे गंगा गंगा अम्भ कहते हैं, बर्फीला पानी, ठंडा पानी, तो कूद पड़ेगा गंगा के धारा में तो फिर आग लगी रहेगी लेकिन उसे कोई भी आंच का अनुभव नहीं होगा। उसी तरह से आपका दर्शन करके हमारा दुख चला गया, हम लोग सुखी हो गए। देवताओं को तो यह सुख मिला भगवान का दर्शन करके, हम लोग कैसे सुखी होंगे? इसके लिए उपाय बताए हैं देवता लोग ही। जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान प्रकट हुए तो वहां सिद्धगण स्तुति कर रहे हैं कि अयम तत् कथामृष्ट पीयूष नद्या मनोवारण क्लेश दावाग्नि दग्ध तीर्षार्थो व गाढ़ो न सस्मार दावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वल्ल। सिद्ध लोग कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये हमारा मन रूपी हाथी, मनोवारण, वारण माने हाथी, मन रूपी हाथी क्लेश दावाग्नि दग्ध, अनेक प्रकार के क्लेश रूपी दावाग्नि से दग्ध है, अनेक दुखों से दग्ध है। जैसे कोई वारण हाथी दावाग्नि से दग्ध हो, ऐसे अनेक प्रकार के दुखों से हमारा मन दग्ध है, लेकिन आपके कथा रूपी पीयूष नदी में, अमृत नदी में जब से ये अवगाहन किया है, हमारा मन लगा है, अयम तत् कथामृष्ट पीयूष नद्या, आपके कथामृत पीयूष की नदी में जब से अवगाढ़ अवगाहन किया है, पहले तिरसार था, प्यास से तड़प रहा था, लालसा थी भोगों की, अनेक दुख था, लेकिन जब से आपके कथा रूपी नदी में आया है, डुबकी लगाया है, तब से ब्रह्म सुख जैसा अनुभव हो रहा है, ब्रह्म सुख से संपन्न हो गया है और न निष्क्रामति, अब ये इस दह से, ये कथा से अब निकल नहीं रहा है, अब हमारा मन रूपी हाथी अब यहां से निकलना ही नहीं चाहता, निकलेगा तो जलेगा, दवाग्नि तो सब जगह लगी ही हुई है, तो आपके कथामृत रूपी नदी से नहीं निकलना चाहता, तो सुख पा गया है, तो हम लोगों का क्लेश ऐसे ही जाएगा, श्रीमद् भागवत रूपी अमृत नदी में आकर के डूबना है, कथा सुनना है, पढ़ना है, इससे हमारा मन सुखी हो जाएगा, सारा क्लेश चला जाएगा। त्रिसार्थो व गाढ़, पहले यह मन तृषार्त था, लेकिन अब कथा के रस में निमग्न है, कोई कामना नहीं है, भगवान में मन लगा है, तो अब इसको ये छोड़ना नहीं चाहता, इस नदी से निकलना नहीं चाहता। दोनों तट पर मान लीजिए आग लगी है, गंगा जी के किनारे बाहर जंगल में, और कोई हाथी ठंडे पानी में खड़ा हो जाए तो निकलना चाहेगा? नहीं, दुख है संसार में, सुख केवल कृष्ण कथा में है, केवल भगवान की वार्ता में सुख है, बाकी सब मरना है, वास्तव में जलना। तो देवतागढ़ कह रहे हैं, श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम लोग सब सुखी हो गए आपको देखकर। लेकिन एक बात कहते हैं, ठीक है तो दुख है, दुख से मुक्त हुए, लेकिन हाथी एक व्यक्ति प्रश्न के केवल पानी में खड़ा रहे तो उतने से काम थोड़े चलेगा, पानी नहीं है वो अमृत है, उसी को पिएगा, अब घास पात खाने की जरूरत नहीं है, वास्तविक अर्थ तो ये है। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि सत्वम विधत्सा खेलोक पाला वयम जदर्था स्तौपाद मूलम समागतास्ते बहिरंतरात्मन किंवान्न विज्ञापन शेष साक्षी। हे प्रभु, फिर भी हम सारे देवता जिस उद्देश्य से, जिस कार्य के लिए आपके चरण के मूल में आए हैं, ते पाद मूलम आपके चरण कमल, तौ पाद मूलम आपके चरण कमलों के संपर्क में आए हैं, तो आप स्वयं उसको कीजिए, कहिए, बताइए उपाय। हम लोग कुछ कार्य के लिए आए, देवता बेचारे पीटे गए थे असुरों के द्वारा और बड़े दुखी थे, तो ब्रह्मा जी सबकी तरफ से बोल रहे हैं कि हम सारे लोकपाल जिस अर्थ के लिए आपके चरणों की शरण में आए हैं, वो आप वो उपाय कीजिए, हमारा दुख मिटाइए। तो भगवान ने कहा कि बताइए क्या दुख है आपको और क्या उपाय किया जाए, क्या दुख है क्या उपाय किया जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे अंतरात्मन, हे सबके भीतर रहने वाले परमात्मा, अब आपके लिए वही अन्य विज्ञापन जो अशेष साक्षी, सबके साक्षी है, सबके हृदय में रहते हैं, और आपसे अब क्या बताना है, बाहर कोई क्या बताएगा कि हमको दुख है, कौन ऐसी बात है जो आप जानते नहीं, हम लोग किस लिए आपकी शरण में आए हैं, क्या दुख है और क्या विधेय है। आपके लिए अन्य विज्ञापन कुछ नहीं है, अन्यों के द्वारा आप विज्ञापन किया जाएगा तब आप जानेंगे, आप अंतरात्मा हैं, सबके भीतर हृदय में है और सबके साक्षी हैं। तो प्रभु अब हम लोग क्या कहें, आप स्वयं जानते हैं, जो करना हो या बताना हो, ब्रह्मा जी यहां तो कहे जो बताना है उपाय बताइए, हमारा दुख कैसे जाएगा, बताइए कि आप कर दीजिए, ये अभी कह रहे हैं। और अन्य विज्ञापन आपके लिए कुछ नहीं है, अन्य के द्वारा आपको विज्ञापन दिया जाए, बताया जाए, वो तो दूसरों को बताया जाता है जिसको पता नहीं होता है, अब तो सब कुछ जानते हैं, अशेष साक्षी, सबके साक्षी हैं, सारी घटनाओं के, सबके विचारों के। तो सरकार अब क्या कहा जाए, आप तो घट घट की बात जानते हैं, उनको क्या दुख है, किस लिए आए हैं, आप स्वयं कीजिए। तो भगवान ने कहा कि आप लोग भी तो देवता हैं, पूज्य हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अहम गिरित्रस्त सुरादयोये, मैं और गिरित शिव जी और ये देवता और दक्षादेव प्रजापति दक्षादि अग्नि रिवके तवस्ते, या ऐसे हैं जैसे प्रचंड अग्नि से निकली हुई छोटी छोटी चिंगारियां हो, लुत्ती हो, ऐसे हम लोग हैं, स्फुलिंग है हम लोग, मतलब केतु है, चिंगारी है, प्रचंड आग जल रही है और उसमें से कोई चिंगारी निकले तो उसकी क्या दिशा है, हम लोग तो चिंगारियां हैं। तो किंवा विदा में से हम क्या जानते, पृथक विभाता, हम आपसे पृथक कुछ थोड़ा सा चमक रहे हैं, विधत समनो दिर्देव मंत्रम, इसीलिए आप ही बताइए, आप ही उपाय कीजिए, ब्राह्मणों और देवताओं के कल्याण के लिए क्या उचित उपाय है, मंत्रणा दीजिए, आप उपाय बताइए, हम आपकी शरण में हैं। सब देवता बेचारे रो रहे हैं, मारे पीटे गए हैं, हमारे पास आए थे, मैं सबको लेकर आपके चरणों में आया हूं, और सरकार सब आपको ही करना है, जो भी सुख का उपाय। तब भगवान ने कहा कि अच्छा है, सुनिए ब्रह्मा जी, शिव जी और सारे देवता, अब हल्ला मत कीजिए, सुनिए मैं जो कह रहा हूं। यहां से भगवान अब समुद्र मथने का प्रस्ताव रखेंगे, अपने भक्त देवताओं को समझा रहे हैं। तो ये प्रसंग कल होगा, किस तरह समुद्र मंथन का उपक्रम हो रहा है। जय श्री प्रभु, हरे कृष्ण।